नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बसंत भाग 3 में संकलित श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती कविता को पढ़ेंगे। कविता प्रारंभ करने से पहले जिस कवि ने इस कविता की रचना की है उसके विषय में बताना मेरा परम कर्तव्य है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 ईस्वी में उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के सफीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB यानी वकालत की परीक्षा पास की। भगवती चरण वर्मा ने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया। इसके बीच इनके संबंध फिल्म तथा आकाशवाणी से भी रहे। बाद में ये स्वतंत्र लेखन की वृत्ति अपनाकर लखनऊ आ गए और यहीं पर बस गए। इन्हें राज्यसभा की मानद सदस्यता प्राप्त कराई गई। उन्होंने एक बार अपने संबंध में कहा था, मैं मुख्य रूप से उपन्यासकार हूँ, कवि नहीं। आज मेरा उपन्यासकार का ही सजग रह गया है, कविता से लगाव छूट गया है। उन्होंने अनेक कहानी संग्रह, कविता संग्रह, नाटक, साहित्य आलोचना आदि हिंदी की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और उनकी अनेक रचनाओं में से दीवानों की हस्ती यानी हम दीवानों की क्या हस्ती उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। अब उनके मन में हम दीवानों की क्या हस्ती यह कविता लिखने की क्यों मन में भावनाएं उत्पन्न हुई। उन्होंने ये कविता उस समय लिखी थी जब हमारा देश स्वतंत्रता की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, प्रतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमारे युवा वर्ग, हमारे वीर बलिदानी और दीवाने जिनके मन में केवल एक ही जुनून था, देश को आज़ाद कराना, उन युवकों की टोलियां जगह जगह घूम रही थी। उन सभी से प्रेरित होकर के उन्होंने जो आज़ादी के जो दीवाने थे उनको अपना विषय बनाकर ये कविता लिखी, दीवानों की हस्ती। ये इस कविता के शीर्षक में दीवानों और दूसरा शब्द हस्ती ये आए। सबसे पहला मेरा कर्तव्य है और आपका, जब तक हम कविता के शीर्षक को नहीं समझ पाएंगे कि इसका अर्थ क्या है, तब तक कविता हमें समझ में नहीं आएगी। दीवानों का यहाँ जो कविता में सीधा सीधा जो अर्थ है, वे बलिदानी सूरवीर हैं जिनके मन में देश को आज़ाद कराने की दीवानगी है, जुनून है, तो दीवाना जो शब्द है उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रयुक्त किया गया है जिनका केवल एक ही लक्ष्य है, देश को आज़ाद कराना। दूसरा शब्द है हस्ती। हस्ती का अर्थ है अस्तित्व, हैसियत, औकात और पोजीशन। लेकिन यह अस्तित्व, हैसियत और पोजीशन ये किसके पोजीशन है? ये देश जो भारत देश है वो महान है और उसकी महानता के सामने हमारी कोई हैसियत या औकात नहीं। वैसे तो दीवानगी और दीवाने बहुत हुए हैं, जैसे संतों में भी दीवानगी होती है, फकीरों में, प्रेमी प्रेमियों में, भक्तों में, योद्धाओं में देखी गई। जैसे मीरा ने अपने गीत में गाया है, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। यह मीरा की दीवानगी कृष्ण के प्रति भक्ति है, लेकिन हमारी कविता में कवि भगवती चरण वर्मा ने भारतीय सूरवीरों के मन में देश को आज़ाद कराने की जो दीवानगी है, दीवानगी सॉरी थी, उसी का यहाँ पर वर्णन किया है। इसलिए दीवाने शब्द का प्रयोग देश पर मर मिटने वाले स्वाधीनता सेनानियों के लिए किया गया है। प्यारे बच्चों, इस कविता में 6 पद हैं, 2, 2, 2, और मैंने इस कविता के लिए 2 मॉड्यूल्स तैयार किए हैं। पहले मॉड्यूल में मैंने 3 और इसका जो दूसरा मॉड्यूल भाग 2 है उसमें भी मैंने 3 इसके पद लिए हैं। तो आइए हम सब दीवानों की क्या हस्ती, एक एक पद का अर्थ सहित भावार्थ या व्याख्या करते। सबसे पहले मैं आदर्श वाचन करता हूँ, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। सबसे पहले आप देखें कठिन शब्द, शब्दार्थ दीवानों, स्वतंत्रता सेनानी। अगला हस्ती, हैसियत, अस्तित्व, औकात। मस्ती, खुशी, आलम, संसार या वातावरण, धूल, मिट्टी या रेत। अब शब्दार्थ के पश्चात भावार्थ पर हम चर्चा करते हैं। भावार्थ, इसका भाव क्या है? इस पद्यांश में कवि ने कहना चाहा है कि देश पर मर मिटने वाले शूरवीर मस्तमोला स्वभाव के होते हैं, वे देश पर सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। बलिदानियों के कारण ही हमारे देश ने स्वतंत्रता हासिल की। इसमें दीवाने कहते हैं, या दीवाने कौन है? जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे सेनानी, कहते हैं हम तो आज़ादी के दीवाने हैं और देश महान है, इसकी महानता के आगे हमारा कोई अस्तित्व या हैसियत ही नहीं है। हम आज यहाँ हैं, कल पता नहीं कहाँ होंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वे अपनी नीतियों को ब्रिटिश सरकार से छिपकर अंजाम देते थे, पता नहीं वे पकड़े जाएं और कारावास में डाल दिए जाएं। हम जिस और भी कदम बढ़ाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। खुशियों से भरा वातावरण सदा हमारे साथ साथ चलता है। हम जिस स्थान पर भी जाते हैं, वहाँ के वातावरण में अपने जोश बिखेर देते हैं और वहाँ के वातावरण पर खुशियों के बादल छा देते हैं। तो इसमें आपने दीवानों के हस्ती, उनके आलम और उनके दीवानगी के विषय में पढ़ा। अगला जो काव्यांश से पद भाग दो, उसका मैं स्वर आदर्श वाचन करूंगा और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी सहस्वर वाचन करें। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम कैसे आए कहाँ चले। सबसे पहले आप इसमें शब्दार्थ देखिए, उल्लास खुशी, आंसू अश्रु जब हमें दुख होता है, पीड़ा होती है, जब हमारा मन व्यथित होता है तब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। अब हम भावार्थ व्याख्या के ऊपर ध्यान देंगे। इसमें इस काव्यांश में आज़ादी के दीवानों का मानना है कि खुशियों से वंचित लोगों तथा संगे संबंधी भाई बंधुओं के बीच अभी वे उनके लिए खुशियां बनकर के आए थे। मस्ती से जीवन जीने का संदेश देने आए हैं। उन्हें देखकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। जब हम अचानक ही उन्हें कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना है, तो उनके सगे संबंधी भाई बंधु के चेहरे की खुशी आंसू बनकर के बहने लगी है। वे दुखी होकर अश्रुधारा बहाते हुए पूछने लगते हैं कि अभी अभी तो आए थे, आपके आने से हमारा मन खुश हुआ था, आपके मिलने से हमें बड़ा सुकून मिल रहा है और अभी आप हमको दुखी करके जा रहे हैं, क्यों जा। इस कथन का उत्तर यह है कि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर लेती थी और उन्हें जेल की सलाखाओं के पीछे डाल देती थी। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी अपने सगे संबंधियों से कुछ ही समय के लिए आते थे, वे एक स्थान से स्थान पर ज़्यादा समय तक टिक कर नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें जो मैंने उत्तर में बताया ये डर सताता रहता था, वे चौकन्ने रहते थे, उनके कान हमेशा बजते ही रहते थे कि कभी कोई आ न जाए। तो इसलिए इस कविता का ना इस काव्यांश का ये भावार्थ। अब तीसरा जो इस मॉड्यूल का जो तीसरा जो काव्यांश है उसका मैं आदर्श वाचन करते हुए आपको भी सहस्वर वाचन करने की उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ सहस्वर वाचन कीजिए। दीवाने क्या कहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब इसमें कठिन शब्द देखिए, शब्दार्थ हैं जग, जग मीन संसार, दुनिया, तरफ, साइड यानी किस ओर, कौन सी साइड, तरफ। अब मैं आपको इस काव्यांश का भावार्थ समझाता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि भगवती चरण वर्मा ने कहना चाहा है कि दीवाने वीरों की कोई राह निश्चित नहीं होती, उनके लिए कोई निश्चित राह नहीं, यानी वो थोड़ी दूर चलते हैं फिर दूसरी दिशा को अपना लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। उनका लक्ष्य को पहुंचने के लिए वो हर प्रकार से जानते हैं कि कौन सी राह चुननी है, कौन सी नहीं चुननी, इसलिए उनके लिए कोई राह निश्चित नहीं होती। वे समय के आधार पर अपनी राह बना लेते हैं। उनके सामने केवल और केवल उनका लक्ष्य ही होता है। और स्वतंत्रता सेनानियों का लक्ष्य क्या है, देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करा। वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी राह पर चल सकते हैं, वे संसार के लोगों से मिलकर उनकी भावनाएं, उनके विचार आदि ग्रहण करके तथा वहाँ के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर अपने रास्ते आगे बढ़ते चले जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी इस जग संसार में रहने वाले लोगों के बीच में आकर इस उनको कुछ देते हैं। देने का मतलब उनके पास कुछ धन दौलत ऐसी नहीं है, उनके विचारों को, उनकी सलाहों को मानने के लिए आते हैं और अपनी भावनाओं को उनके सामने प्रकट करते हैं और सब कुछ सुनकर के वो अपना रास्ता नापते हुए आगे चले जाते हैं। मैंने इन तीनों काव्यांशों का अपनी PPT में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शब्दार्थ के साथ भावार्थ और व्याख्या लिखी है। आप उनको एक एक काव्यांश को बारीकी से समझिए, पढ़िए। यहाँ तक मैंने इसकी एक वर्कशीट भी बनाई है, उस पर भी आप उत्तर लिखने के लिए आपने इस कविताओं काव्यांशों को पढ़ना है और पढ़ करके आप इसके उत्तर, इनके प्रश्नों के उत्तर भली भांति दे पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तीनों काव्यांश, कवि परिचय और ये कविता कब लिखी, क्यों लिखी, ये सब आपकी समझ में आया होगा। अब मैं पूरी उम्मीद के साथ अपने इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।